हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अनाही का अंदाज़ा बिल्कुल सही था, पूरा निमानी हाउस अब सिर्फ विवाह को ये मनाने में लगा था कि उसे उपवास खोल लेना चाहिए। उसकी वजह से घर में बाकी लोगों ने भी उपवास नहीं खोला था। राधिका ने गुस्से में कहा, छोटी बहू, उपवास नहीं खुलेगी तो क्या हम भूखे रहेंगे? मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ। उसकी बात सुनकर माधवी ने कहा, मैं भी नहीं और ना ही अपनी बहू को रहने दूंगी। ये बोलते वक्त उसकी नज़र राव्या की तरफ थी, जो विहा के पास बैठी थी और विहा दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए रो रही थी। वो रोते हुए शिकायत कर रही थी, आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी दी यहाँ नहीं है? अब इतने सारे अजनबियों के बीच मुझे डर लग रहा है। आप सब लोग बहुत बुरे हो, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। निवेदिता, जो उसके बगल में बैठी थी, उसने जल्दी से कहा, बच्चे माफ़ कर दे, हमें लगा तो थकी हुई है, तुझे सो जाना चाहिए, इसलिए तुझे परेशान नहीं किया। हमारा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। सामने खड़ा वेदांत बस खामोशी से उसे देख रहा था, क्योंकि उसका दिमाग तो पूरी तरह खाली हो चुका था। ऐसा लग रहा था उसके दिमाग के फ्यूज उड़ गए हैं। उसे पता था उसने शादी नहीं की है, बल्कि एक बच्चे को गोद लिया है, लेकिन वो बच्ची इतनी नादान होगी, इसका अंदाज़ा उसे अब धीरे धीरे लग रहा था। उसने अपने मन ही मन कहा, अनाही की बच्ची, तू एक बार वापस आ, तुझे मैं बताऊंगा इस आफत को जो मेरे गले पड़ गई। अब ये ना किसी की सुनती है और बस किसी भी बात पर रोना शुरू कर देती है। मेरा पूरा परिवार परेशान हो चुका है। पता नहीं लोग 5 साल के बच्चों को कैसे संभालते हैं, मुझे ये 20 बरस वाली बच्ची नहीं संभल रही है। निवेदिता ने जब देखा कि वेदांत बिल्कुल शांत खड़ा है, तो उसने जल्दी से कहा, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है इसे? वेदांत ने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर आगे बढ़कर एक झटके से विहा को अपनी बाहों में उठा लिया, जिससे उसकी आंखें फैल गई। उसने झटपटा कर कहा, छोड़ो मुझे गंदे आदमी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा छोड़ो मुझे। बाकी सब भी हैरानी से वेदांत की तरफ देख रहे थे, किसी को भी उससे ये उम्मीद नहीं थी। वहीं राव्या ने मुस्कुराकर धीरे से अनंत के कान में कहा, ये दोनों भाई कितने रोमांटिक है, मुझे ना अपना फ्यूचर हस्बैंड बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था, पर पता नहीं था आप जैसा बिना इमोशन वाला पुतला मिल जाएगा मुझे। अनंत ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें सबके सामने बाहों में उठाकर लेकर जाऊं या फिर तुम्हारे इन लाल होठों को सबके सामने चूम लूं? क्या तुम इतना रोमांटिक हस्बैंड बर्दाश्त कर सकती हो? मैं उस हद तक भी रोमांटिक हो सकता हूं, अगर तुम वादा करो कि पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी। वैसे आज तुमने मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखा है, कहीं अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? अनंत की बात सुनकर राव्या बिल्कुल शांत हो गई थी और शर्म से उसके गाल भी लाल हो गए थे। उसके पास अनंत की बातों का जवाब नहीं था। वहीं वेदांत ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा, आप सब लोग अपना उपवास खोल सकते हैं, इसको मैं संभाल लूंगा, आप लोग चिंता मत करिए। रितेश ने जल्दी से राधिका की तरफ देखा, जो देखा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, भाग्यवान, अब तो गुस्सा छोड़ दो, चलो अपना पूजा का सामान लेकर हम टेरेस पर चलते हैं और तुम्हारा उपवास खुलवाते हैं। जिग्नेश ने भी सोफे से उठते हुए कहा, देखो वो बच्ची है, भूल जाओ, वो अपने बचपन में ये सब करती रहती है और कहीं ना कहीं वो सही बोल रही है, उसकी बहन यहाँ होती तो उसे ज्यादा अच्छा महसूस होता। अब हम इस बात को पकड़कर नहीं बैठ सकते हैं, चलो टेरेस पर। सब लोग एक एक करके टेरेस पर चले गए। निवेदिता हॉल में बैठी अब वो नमन की उस बड़ी सी तस्वीर को देख रही थी, जिसकी लंबी उम्र के लिए आज वो उपवास नहीं रख पाई थी। उसकी आंखों में पानी था और उसने धीरे से अपनी आंखें पोंछते हुए खुद से कहा, मैं अपने पत्नी व्रता धर्म को कभी नहीं निभा पाई, मैं आपको इंसाफ तक नहीं दिला पा रही हूँ, मैं थक गई हूँ इस दुनिया से और दुनिया के लोगों से, आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? ये बोलते हुए उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाया और धीरे धीरे सिसकने लगी। वो घर वालों के सामने नहीं रो सकती थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ उसके पति की तस्वीर थी। थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। वहीं वेदांत के कमरे का हाल देखने लायक था। बिस्तर पर मौजूद तकिया और चादर अब फर्श पर थे। स्टडी टेबल पर रखा वेदांत का वो लैपटॉप फर्श पर दो टुकड़ों में बिखरा हुआ था।
विहा जो प्यार से उसके लिए गमला लेकर आई थी उसे वो फिर से तोड़ चुकी थी और वो पूरी तरह रोती बिलखती हुई वेदांत को देख रही थी। उसके हाथ में गमले का टूटा हुआ टुकड़ा था और उसने दांत पीसते हुए कहा, खबरदार जो मेरे पास आए मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, पहले मुझे अपनी दी से बात करवाओ। वेदांत दूर से बस शांत नजरों से उसे देख रहा था जैसे उसके लिए ये कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। उसे विहा के रोने से जैसे फर्क पड़ना बंद हो गया था। उसने अपना फोन निकाल कर अनाही का नंबर डायल किया। अनाही और रूहान जो खाना खा रहे थे उनका ध्यान एक साथ अनाही के फोन की तरफ गया और अनाही ने जल्दी से फोन उठाकर स्पीकर पर लगा लिया क्योंकि वे खाना खाते वक्त फोन हाथ में लेकर बात नहीं कर सकते थे। वेदांत ने भी फोन स्पीकर पर लगाया और अनाही को विहा की चिल्लाने वाली आवाज सुनाई दी। मैंने कहा मेरी दी को कॉल लगाओ, क्या तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो? ये करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो तो सुन लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तुम मुझे पागल खाने भेज दो, आज मैं या तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी या फिर खुद जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया हो, मुझे घुटन हो रही है यहाँ, अनाही ने घबराते हुए कहा। वेदांत जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसे संभाल लो। वेदांत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बहन इतनी अच्छी है ना कि मेरे संभालने से वो संभल जाएगी। पूरा परिवार उसे समझाकर देख चुका है लेकिन उसे यहाँ नहीं मेंटल असाइलम में रहना चाहिए था। और मुझे तो ये नहीं समझ आता ये बात बात पर मुझे धमकी क्यों देती है जैसे मैंने इससे जबरदस्ती शादी की हो। ये खुद थी जो मुझसे शादी करना चाहती थी, मैंने थोड़ी बोला था इससे। भगवान कसम मैंने अपनी जिंदगी में किसी के इतने मूड स्विंग्स नहीं देखे हैं। इस लड़की का दिमाग अपनी जगह से हिला हुआ है, मैं पागल हो जाऊंगा इसको झेलते झेलते। उसकी इन बातों से अनाही को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन विहा का छोटा सा दिल जरूर टूट चुका था और रोते हुए घुटनों के बल गिर गई और फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से होता है, मैंने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर मैं ये सब नहीं करती तो आपकी शादी दी के साथ हो जाती, आप दोनों एक साथ बहुत खुश रहते और कभी भी किसी को भी मुझे झेलना नहीं पड़ता। मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मम्मा के पास जाना है, अनाही ने जल्दी से कहा। बेटा समझने की कोशिश करो, देखो मैं भी खाना खा चुकी हूँ, रूहान जी मेरे पास है, तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो। रूहान ने भी जल्दी से कहा, हाँ विहा खाना खा लो, तुम्हारी दी बिल्कुल ठीक है।
वेदांत ने जल्दी से कॉल कट किया और अपना फोन बेड की तरफ देखते हुए तेज कदमों से विहा के पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर और दोनों हाथों से अपने कान पकड़ते हुए बोला, हम सॉरी बच्चा, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था और मुझे पता है मेरे सॉरी से तुम मानने वाली भी नहीं हो और अगर मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो तुम कहोगी कि मैं समझदारी वाली बातें कर रहा हूँ और तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सुन रहा हूँ। अब तुम ही बताओ कि मुझे करना क्या है क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे टूटते हुए तो नहीं देख सकता हूँ। थोड़ी देर पहले वाला मूड ज्यादा अच्छा था जहाँ तुम मुझ पर गुस्सा कर रही थी, चीजें तोड़ रही थी, ऐसे टूट कर बिखर जाओगी तो कैसे चलेगा, तुम्हें मुझे मारना भी तो है। इतना बोलकर उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर विहा के चेहरे से उसके हाथों को हटाने की कोशिश की और अचानक ही विहा एकदम से बेहोश होते हुए उसकी बाहों में झूल गई जिसे देखकर वेदांत की आंखें फैल गईं। उसने जल्दी से घबराते हुए अपने एक हाथ से विहा का गाल थपथपाकर कहा, विहा तुम्हें क्या हुआ है, प्लीज मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक मत करो, उठो मैं तुम्हें अभी लेकर जाता हूँ तुम्हारी मम्मा के पास, क्या तुम्हें मैं सुनाई दे रहा हूँ? लेकिन सामने से विहा का कोई जवाब नहीं आ रहा था जिसका साफ मतलब था कि वो नाटक नहीं कर रही है बल्कि सच में बेहोश हो चुकी है।